वो वृंदावनेश्वर नहीं है। श्रीमती जी राधिका जी वृंदावनेश्वर है, वही राजा है। इसलिए उसके पास ही के गांव कुमराव में, कुमराव नामक ग्राम में गोपियों में गोपियों ने घोषणा की ये कृष्ण राजा नहीं है, श्रीमती राधिका जी यहाँ की सर्वेश्वरी रानी है, महारानी जी। और राधा जी ने आदेश दिया ललिता विशाखा को कि यदि कोई हमारे राज्य में खुद को राजा घोषणा करता है तो उस राजा को और उसके परिकरों को पकड़ करके हमारे पास में ले आओ। उन्होंने मधुमंगल को जाकर के पकड़ा, कृष्ण वहां से भाग गए किंतु मधुमंगल जी पकड़ में आ गए। मधुमंगल को पकड़ करके हाथ को उनको बांध कर और राधा जी के समीप में वो ले आकर के उनके चरणों में गिरा दिया, हाथ जोड़ करके वो सामने खड़े हो गए। कल इसको दंड दो, अच्छी मध्यम गुंचे लगाओ और इसको कारागार में हमारे बंद कर दो। जब तक ये अपने राजा को नहीं ले आता है जो घोषित कर दिया है, ये लोग बागी हैं। बागी मैंने क्या, बागी मैंने विद्रोही हैं, विद्रोह किया है हमारी रानी के साथ में, इसलिए इनको पकड़ करके सबको ले आओ और यहीं पर उनको दंड देना है। मधुमंगल जी आकर के गिर गिड़ाने लगे, रोने लगे। मैं तो उससे हमारा कोई संपर्क नहीं, जरा पेट का प्रश्न है, वो कभी कभी हमें लड्डू खिला देता है, यदि आप लोग हमें लड्डू दे दें तो मैं कभी उसके पास में जाऊँ आप लोगों के ही हम पास में, तो हमको आप लोग क्षमा कर दीजिए, हम अब किसी महारानी जी की सेवा करेंगे उसकी सेवा नहीं करेंगे, ऐसे नहीं होगा। तुम उस जो राजा बना है उसको पकड़वा करके और हमारे पास ले आए। सज ठीक, वो जाकर के कहा कृष्ण से आप राजा मत बनिए, नहीं तो आपको जेल खाने में वो लोग बंद कर देंगे और आपको दंड देंगे। इसलिए गनीमत इसी में है, इसी में भलाई है कि आप भी उसकी आधीनता स्वीकार कर लें और उपहार के साथ में वहां चल करके उसके चरणों में उपहार दीजिए। तब उन लोगों की एक बात है, ये आपको छत्र धारण करना पड़ेगा और महारानी के ऊपर में और चमर फुलाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा जी ठीक बात है, मैं इस पर महाराज जी तो कृष्ण यहीं पर डर करके आए उस स्थान पर और कृष्ण ने चमर धारण किया, छत्र धारण किया और चमर डुलाए थे, इसलिए उस गांव का नाम उमराव हुआ। उमराव माने एक तरह से राजा होता है, बड़े आदमी को उमराव का। तो राधा जी वहीं पर बनी थी उमराव। उसी समय में कुछ दिनों के बाद में कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के परिकर लोकनाथ गोस्वामी जी खैरा में भजन करते थे। खैरा माने खदेड़ा वन, बसपापुर को खदेड़ा था इसलिए खदेड़ा वन अथवा खैरा वन, खदीर वन अथवा, देखो ये पुकार रहे हैं, यही स्थान की महिमा है। एक साथ में पचासों हजारों मयूर एक साथ में घूमते हैं। अभी काजे ने क्यों चीज खाएंगे, हम लोगों की कथा सुन रहे हैं, सुनने के बाद में एक साथ में ये बोलेंगे। तो वहाँ पर भजन करते थे और वहाँ से कभी कभी ये सब जो स्थान है, देव दुर्लभ ब्रह्मा शंकर के भी आराध्य ये सब धाम है, ये देख रहे हैं सब, हम लोग कमाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, कितनी सुंदर सुंदर लताएं हैं, जब ये फूल जाएंगी ना खिल जाएंगी, और मयूर उस पर बैठेगी, कोयल बैठेगी, कितना सुंदर कलरव ये करते हैं, ये अपराकृत वृंदावन का ऐसा सब सुंदर नरी बहुत कम जगहों में, हम लोग इसीलिए आते हैं भाव की उद्दीपना के लिए। वृंदावन में तो है ही नहीं, वृंदावन तो टाउन बन गया, शहर बन गया, थोड़ा सा निधुबन और तो खाने क्योंकि ऐसे सुंदर और ऐसा कहीं है उसमें मोर बैठते हैं, न कोयल को हफ्ती है न फिर डुबकी पक्षियां, ये देखो ना जल की भी ये देखो ये के का कर रहा है, के का रहा है। तो उसमें भजन करते थे हमारे गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी। यहीं पर पासी में हम चलेंगे अभी सिर घाट में, अभी चलेंगे हम अक्षय वट में, अभी चलेंगे बत्सबल में, इधर में राम घाट में हम जाएंगे। अभी राधा और कृष्ण का खेलन बन है जहाँ पर की खेलते थे, जहाँ पर की सखाओं के साथ में कृष्ण पीड़ाएं करते थे, जहाँ पर की बलदेव जी राज किया था, जहाँ पर की वो सब खेले थे, जहाँ पर की वो ऐसे चले थे, जहाँ पर उन्होंने पाए पान किया। पाए माने क्या? दूध पान। कैसे दूध पान किया? गाय खड़ी है और कृष्ण बछड़े जैसे बनकर के मुख में तन लगा दिया। तन लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप सारा रूप में प्रवाहित होने लगा, कृष्ण भर पे दूध पी लिया। ऐसे ये पाए गांव है और कितने गांव हैं। कृष्ण की लीलाएं ऐसी इन जगहों में हुई है कि एक मनोरम सप्तम है। सभी गांव का नाम कृष्ण की लीलाओं के ऊपर में सब पड़ा हुआ है। ऐसी कोई भूमि नहीं है, ऐसी कोई भूमि रज नहीं है जहाँ पर कि कृष्ण और राधा जी के चरण न पड़े हों और उनकी भूमि से दूसरी के लिए सब। पासी में देखिए यहाँ पर तम तमाल कर कृष्ण के नीचे बैठे हैं और वहाँ पर चलिए तो चारों कदम में कदम के पेड़ हैं, वो आरासक सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण की सांकेतिक लीलाएं भी होती थी। संकेत मैंने वहाँ देख करके आए ना, बरसाना आनंद गांव के बीच में, और ये देखिए ये भी एक संकेत बन है। यहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी सखियों के साथ में मिलते थे। रात्रि काल में सब रास होता था, अभी गोचारण के लिए हजारों गायें यहाँ पर गौशाला में है, हम लोगों को मिली ना रास्ते में मिली। ये सब प्राकृत दृश्य कृष्ण की समस्त लीलाओं की स्मृति कराती। एक समय हम लोग आए, पैदल आ रहे थे तो इस जंगल में उधर से रास्ता पर नहीं आकर के हम लोग कुछ भटक गए, तो भीतर से हम लोग प्रवेश करके ऐसे में आए तो जितने लोग थे सब ऐसा कोई नहीं जिसका कपड़ा कांटों में खींच नहीं लिया। सब लोगों के बड़ा आप लोग मोर सब फूक रहे हैं, कोयल फूक रही है और कितना सुंदर रम्य स्थान। हम लोग किसी प्रकार से रास्ता फूटा भटक गए, सोचा जी आज हम लोग का कितना बड़ा भारी सौभाग्य था, मानो कृष्ण और राधा जी को अन्वेषण करते ही इसलिए आ रहे हैं। तो ये सब ऐसे सुंदर सब स्थान है, ये सब भजन के करने के लिए स्थान है। कृष्ण की लीला विहार भूमि नहीं है, ऐसी सब कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य नहीं होता। तो महाराज जी ने कहा ना कि हम लोग यहाँ पर आ नहीं सकते, उस भाव को कि उद्दीपना हमारी हो यहाँ तब तो हमारा यहाँ आना सार्थक है। तो यहाँ पर संकेत भी, संकेत माने कब, निशा काल में कृष्णचंद्र और गोपियां यहाँ अभिसार करके आती हैं, मयूर उनको जगाते हैं, कोयले उनको जगाती हैं, भौरे उनको जगाते हैं, पशु पक्षी जितने हैं सभी उनको जगाते हैं। ऐसा ये सब स्थान। तो यहाँ पर पाटी में बलदेव प्रभु जी आए थे, इस स्थान का नाम बिहार बन, इसीलिए ये कृष्ण यहाँ पर बिहार करते थे। गोपियों के साथ में इनका विलास होता था, सखाओं के साथ में ये विलास होता था। यहाँ पासी में जमुना नदी बहती थी, कभी दूर चली जाती है कभी निकट आ जाती है, तो वो दूर से उधर जा रही थी। बलदेव प्रभु जी हम लोग जाएंगे वहाँ पर राम घाट पर, वहाँ पर रास कर रहे थे। जब रास कर रहे थे तो उन्होंने जमुना को कहा कि गोपियां प्यासी हैं और ये क्लांत हो गई हैं, थोड़ा सा पानी हमको पिलाओ, जल्दी आ जाओ उनके पर। तो जमुना जी इछलाती उधर से बहने लगी, वो समुद्र की तरफ में जा रही है। ये तो मेरी बात नहीं मानती, तुम हमको साधारण समझती है, अच्छा तथा बस फल लेकर के और उसको ऐसे लाए खेच लिया एकदम, कहा उधर से जा रही थी उधर में, और उन्होंने ऐसा खींचा जो उधान तक जाने के फान है, उजान जिसको कहते हैं, उजान माने उल्टा बहना, वो तो जा रहे थे इधर और खेच लिया शेरगढ़ से भी उस तरफ में और वहाँ जाकर के फिर यमुना को ऐसे घुमा दिया। आज तक भी उसके साक्षी यमुना जी हैं, उनको ऐसे बहा ले गई। यमुना जी तो ये सागर की पत्नी है लोग कहते हैं और सागर की तरफ ले जाए, किंतु हम लोगों ने सुना है कि कालिंदी जी यमुना जी कृष्ण की पाठरानी बड़ी प्रिय सखा प्रियतम सखी है। यदि कृष्ण की प्रियतमा है तो बलदेव जी उसको कैसे अपने पास में खींच सकते हैं? राधा जी के तरफ में बलदेव जी कभी नहीं देखते और दूर से श्रीमती जी उनको प्रणाम करती हैं और दूर से ही बस ऐसे हाथ उठा करके उनको आशीर्वाद दे देते हैं। यदि उनको कोई आभूषण भी देना है तो वो ललिता विशाखा के माध्यम से या और दूसरों के माध्यम से और राधा जी के पास में पहुंचाते हैं, मर्यादा का कभी भी लंघन नहीं करते। तो यहाँ तो मर्यादा का लंघन करके और यमुना को खींच लेंगे और गोपियों के साथ में राज करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वही मर्यादा को बनाने वाले राम और मर्यादा को कैसे उल्लंघन कर देंगे? और बलदेव जी की जो गोपियां थी वो कुछ अलग गोपियां थी, ये गोपियां नहीं कृष्ण की प्रियतमा नहीं, शंखचूर से बधक से पहले कुछ गोपियां बलदेव पर अनुरक्त थी और अधिकांश कृष्ण पर अनुरक्त थी। कृष्ण के साथ में इन गोपियों ने रात में भाग लिया जो कि कृष्ण की अनुरक्ता थी और बलदेव के प्रति आकृष्ट होने वाली चंद्र गोपियां जो थी वो बलदेव जी के साथ में यहाँ पर रास किया था। रास किया इसलिए रास करने का और कोई उद्देश्य नहीं, ये गोपियां कृष्ण के विरह में तड़प रही हैं, इनको कैसे आनंदित किया जाए, उनको कैसे सुखी बनाया जाए, इसके अतिरिक्त और कोई भी उद्देश्य नहीं, इसलिए यहाँ पर किया। तो ये यमुना जी या गोपियां कृष्ण की प्रियतमा है तो गोपियां तो बलदेव वाली तो उनके साथ में राज किया, किंतु यमुना जी को क्यों आकर्षण किया कालिंदी जी को? तो ये जो यमुना जी जो सागर में जाती हैं और सागर की जो प्रियतमा है वो इस कालिंदी जी की अंश है। यमुना जी जो हैं कालिंदी वो ये कृष्ण की प्रियतमा है और इनके अंश हैं द्वारका में जो कालिंदी हैं उनकी अंश हैं। और ये जो जिनको बलदेव प्रभु जी ने खींचा वो यमुना में जैसी ही वो सागर पत्नी को खींचा, जैसे कृष्ण में नारायण वासुदेव शंकरसम प्रद्युम्न अनुरुद्ध राम नृसिंह कल्कि वामन और त्रिविक्रम इत्यादि सभी उसी में रहते हैं कृष्ण में, और उसमें कृष्ण असुरों को विनाश करते हैं विष्णु के द्वारा, कृष्ण नहीं ये सब काम करते, उसमें शिव निकल करके नारायण अपने धाम में चले जाते हैं और वामन इत्यादि अपने धाम में चले जाते हैं, कड़ा से साई विष्णु इत्यादि निकल करके धाम में चले जाते हैं। ऐसे इस कालिंदी ये जो कालिंदी मूल है वृंदावन वाली ये तो कृष्ण की प्रियतमा सखी है और उनकी अंश है द्वारका वाली, और उन लोगों की अंश के अंश कला जो है वो इसी में प्रवेश करके रहती है, उसको बलदेव प्रभु जी ने इसमें से खींच लिया, इसलिए कभी रसाभास दोष नहीं होना चाहिए। यदि कृष्ण की प्रिया को बलदेव प्रभु जी आकर्षण करते हैं तो ये दोष की बात हो जाएगी, इसलिए ऐसा ही होता है, उनकी अंश की अंश है उसमें से बलदेव प्रभु जी ने आकर्षण करके अलग करके उनको खींच लिया। लोगों ने इस तथ्य को आंतरिक तथ्य है सिद्धांत को वो समझ न सके, इसलिए यमुना जी को आकर्षण किया, उन लोगों ने उसमें जल पान किया, उसमें स्नान किया, स्नान करते गोपियों को संतना दे करके और फिर वो चले गए। दो महीने तक रहे मधु और फाल्गुन और चैत्र के महीने रहे, फिर इसके बाद में वो चले गए। इसी प्रकार से ये लीला भूमि कृष्ण की श्रीमती राधिका की गोपियों की अत्यंत गुप्त ये सब स्थान है। हम लोग यहाँ पर प्रणाम करके और आसन स्थली वहाँ पर दर्शन करके और फिर परिक्रमा करते हुए वहाँ पर हम पहुँच
गए। अभी आप लोग इसलिए कहे, अरे कृष्णा है पराग पश्चात तो, अरे उनको उनको सेवा में लगाए दिए हैं, उन्होंने मानते हैं राजा जी है पराग पश्चात। आप लोग बताइए कोई हो सकते
क्या आया हो सकता
कृष्णा राधा जी परात्पद तक तो नहीं हो सकती।
सुनिए हमारा कहना तो सुनिए, गुस्सा हो जाते राधा जी को क्या करे,
वो मना कर रहे हैं आपको, वो देखिए
और तो बोलता है
बहुत अच्छा ठीक बोलते हो
राधा जी को क्या करे, इतना गुस्सा हो गया। अरे जनानी आदमी को साथ हम मर्दना हो करके क्या लड़ाई करें, तो जो कहे उसको तो मन का खुश कर दो, इसीलिए वो आ करके
क्या है बिंब फल है। ये कृष्ण के अधरों की तुलना और राधा जी के अधरों की तुलना बिंब फल से भी बहुत ही कोमल है, बहुत और अत्यंत ठंडा भी है और अत्यंत मीठा भी है, ये बहुत सुंदर इसमें गौ प्रमाण। हम लोग उधर जा रहे थे तो परिक्रमा ऐसे नहीं होती, परिक्रमा में कुछ कष्ट करना पड़ता है। तो ये बलदेव प्रभु जी हम लोगों के गुरु हैं, इन्होंने सोचा जैसे ऐसे ही भगी भगी जा रहे हैं, भगे भगे जा रहे हैं और सबसे ऊपर में चढ़ करके जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ब्रजमंडल की परिक्रमा इनसे तो करवा लें। तो इसलिए हम लोगों को अपने स्थान में पैदल ले आए, कष्ट जरूर हुआ किंतु कष्ट से लाखों गुण अधिक हम लोगों को कुछ मिलेगा ही ना। ये देख रहे हैं ये पेड़ सब कैसे सुंदर झुके हुए हैं, ये 5,000 वर्ष पहले से भी ये नीम पेड़ है और भी पेड़ काफी मोटे मोटे और बड़े पुराने पेड़ देना पड़ती है। तो कदम्ब है, गुलर है, बट है, नीम है, ये पंचवटी जैसी है। तो यहाँ पर बलदेव प्रभु जी रास किया था और कहीं ब्रिज में नहीं उनका रास दिखाई पड़ता, क्योंकि यहाँ पर यह रास बलदेव जी अखंड गुरु तत्व है। बिना बलदेव प्रभु जी की कृपा के हम लोग ब्रज में प्रवेश नहीं कर सकते, कृष्ण लीला को नहीं समझ सकते, धाम भी बलदेव प्रभु जी। ये ब्रजमंडल जो धाम है वो कौन है, बलदेव प्रभु जी गुरु के रूप में भी सब रसों से सेवा करते हैं, समस्त गुरु तत्वों के मूल लिए अज्ञानता को भी दूर करते हैं और रस में भी प्रवेश कराते हैं। ये बलदेव प्रभु जी हम लोग आए हैं यहाँ पर, यहाँ पर सभी लोग नहीं आ सकते, देखते हैं जैसा था पहले तो और भी कठिन रास्ता था, कभी ब्रजमंडल की परिक्रमाएं यहाँ आती, कभी बहुत कम लोग यहाँ पर आते। यहीं पर पास में हम अभी चलेंगे गंगा यमुना जी के किनारे, अभी यहीं से दिखाई पड़ेगा, यमुना जी ऊपर से आ रही हैं और उधर में चली जा रही है उधर से। बलदेव प्रभु जी ने गोपियों को पानी पिलाने के लिए और उनको सुशीतल जल में स्नान करने के लिए थक गई थी, उन्होंने उधर से ही उसको हल से लेकर के और शेरगढ़ जहाँ हम लोग उसकी बस गई थी फिर लौट करके आई, उससे भी और आगे उठानी नाम का स्थान है वहाँ तक उसको खींच करके ले गए। गोपियाँ भी कम नहीं थी, बलदेव प्रभु जी जो गोपियां थी वो भी करोड़ों होंगी, अगिनत होंगी, कृष्ण की तो अनगिनत ही हैं इनकी भी, इसलिए राष्ट्रमंडल ये सब पूरा स्थान था पूरा एकदम जैसे ये वट वृक्ष देख रहे हैं सघन छाया है चारों तरफ से एकदम, ऐसे ही बड़ा मनोरम स्थान था बलदेव प्रभु जी ने यहाँ पर वो बारुणी का रस पान किया। बारुणी जी आ गई में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके वहां से रस पहनने लग गया। बारुणी जी उनकी सब समय सेवा करती, सुंदर मधु फरने लग गया वृक्ष, और कृष्ण और गोपियां सब अपने चुल्लू रूपी कटोरों में ले ले करके वो पान करने लगे। और फिर उन्होंने नृत्य किया, गोपियों को कृष्ण की जो विस्मृति थी, विस्मृति नहीं
विरह
विरह था, उस विरह को उपदेश रूप में मिलता। इसलिए यदि हम लोग राधा कृष्ण में के चरणों में प्रेम चाहते हैं, यदि उनका भजन करना चाहते हैं, अनुराग में भजन करना चाहते हैं, तो बलदेव जी के चरणों में भी हम लोग कपट रूप से यहाँ पर हम लोग प्रार्थना करें। ब्रज में ये उनका सबसे बड़ा फरीसीय स्थान है। जय राम घाट जय
रोहिणी
नंदन,
जय जय वृंदावन वासी जन,
सब लोगों को प्रणाम करना चाहिए। ये सब ब्रजवासी लोग, ये सब वृक्ष लोग भी ब्रजवासी हैं। हम लोग बहुत अद्भुत स्थान में आए हैं, यहाँ का को प्रणाम करके और यहाँ की स्मृति लेकर के गंगा जी का दर्शन करके फिर हम
यमुना जी
और फिर घाट में वहाँ पर स्नान करेंगे, वहीं पर हम शाम भी करेंगे और फिर वहाँ से आगे बस बनने। बीच में एक अक्षर गौट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से फिर दो मील एक मील जाना पड़ेगा, एक मील जाना एक मील आना किया और भी अभी तो इसलिए उसको छोड़ करके हम लोग वहीं पर तीर घाट में गए। वो तपस्या का स्थान है, अक्षर गौट है, भीतर में जाना
है, थोड़ा
सा एक मील भीतर में जाना पड़ेगा।
नहीं व्यावन हुआ
है, अब यहाँ से हम लोग शेरगढ़ होते हुए दलौता को जाना पड़ेगा। हम लोग
बोलो दाऊ भैया की जय, दाऊ घाट की
जय,
राम घाट की
जय,
गौ प्रेमानंद।
पहले यमुना जी ये कौन दिशा है? ये है पूर्व दिशा, उधर में है उत्तर दिशा, इधर में है दक्षिण दिशा, करीब करीब इधर में है पूरब, और इधर से उत्तर से यमुना जी आ रही हैं और दक्षिण में जा रही हैं। बस ऐसे यमुना जी को खींचा और वो चली गई है एकदम वहाँ उधार, और वहाँ से उल्टी बहने लगी, और फिर उधर से आकर के फिर वहाँ पर मिल करके तब फिर उधर भी, इसलिए इसको उल्टी बहे धार यमुना की प्रेम नदी
आती
बहे उल्टी बहे धार, कोई मारे ना तो पास अलंकार की
जय।
कालिंदी देवी जय, गौ प्रेमानंद। अभी हम लोग यहाँ से यमुना जी का दर्शन करने अब यमुना जी में जा रहे हैं, बहुत सुंदर वहाँ पर धारा मिली तो वहीं पर स्नान करेंगे, वहीं पर भोजन करेंगे, विश्राम करके तब फिर आ जाएंगे। यही पेड़ है कदम्ब का, देख रहे हो यह वही पेड़ है, और वही घाट है जहाँ पर भी गोपियाँ स्नान करती थी, और उनके कपड़े यहीं पर रख दिया अपना, और इसी के पेड़ के ऊपर में सब कपड़े लेकर के कृष्ण चढ़ गए और यहीं पर लटका दिया, मानो लाल लाल हरे पीले सब फल लगे हुए हैं और दिखलाने लगे, और यहीं से जोर से हंसने लगे तो गोपियाँ सब देखी जा रहे ये ऊपर में क्या, हमारे कपड़े कहाँ गए, और यहीं से कृष्ण जी बोले कि तुम लोगों ने जल में जो उतरी इसलिए तुम्हारा वरुण देव के यहाँ अपराध हुआ, तुम लोग वरुण देव के उद्देश्य से निकल करके प्रणाम करो। उन्होंने कहा हमारे कपड़े तो लौटा दो, तब हम लोग आकर के वरुण देव की स्तुति पर जो कुछ कहोगे करेंगे। तो कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, पहले क्षमा मांगो और तब होगा। गोपियां न पानी से निकली, आप कृष्ण की बात नहीं मानी, तो वो कृष्ण ने कहा जो छोटे छोटे बच्चे थे तुम लोग जाकर के उनको पकड़ लाओ। तो उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे चार पांच वर्ष के
लगभग,
वो यहाँ से उतर करके ऊपर से और नीचे गए खाट के पास में। गोपियों ने हुंकार भरा, पकड़ लो इनको, इन बंदरों को पकड़ लो। बस दौड़ झपट करके पानी में थोड़ा सा ही बस ऐसी बंदर घुड़की दी जो उनके तो प्राण सूख गए और दौड़ करके झट सीट पर चढ़ गए। कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे किसी का साहस नहीं ऐसा कर सके। सिर्फ कृष्ण की कुछ इच्छा जान करके गोपियां पानी से निकली, उनको प्रणाम किया और कृष्ण ने वहीं पर उनको वरदान दिया और वरदान बोल दे करके बोले अगली कौन रात में शरद पूर्णिमा के रात में हम तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, तुम्हारे साथ में रात इत्यादि करें। तो वही स्थान है और यही पेड़ है, उसी समय का 5000 वर्षों का पुराना वृक्ष है। आप लोग श्रद्धा से इस जड़ को प्रणाम करके और तब फिर हम चलेंगे वहाँ पर स्नान करके आएंगे। तब वो कात्यायनी देवी पास में है, वहीं पर हम लोग उनका पूजा अर्चना करके और तब हम लोग वहीं पर प्रसाद। आप लोग सभी लोग
जमुना ठीक है,
आप लोग
बल्लभाचार्य जी की बैठक है और ये बचपन है, यहीं पर बच्चों को चुरा करके रखा था। बैठिए और सुनिए।
यहाँ पर आप लोग आए हैं जेखने अपनारा ऐसे स्थान होते बक्षवन। इधर आ जाओ सुनो, इधर आ जाओ सुनो। जिस स्थान पर हम लोग आए हुए हैं ये बक्षवन है। कृष्ण को एक बार इच्छा हुई कि जितनी ब्रज में गैया हैं वो गैया हमको बड़ी प्यार करती हैं और जितनी माताएं हैं वो भी मुझे प्यार करती हैं। तो जितनी गैया और माताएं सभी चाहती हैं कि मैं उनका पुत्र हो जाता और उनकी गोदी में खेलता और उसका स्तनपान करता, दूध पीता। कृष्ण को तो आत्माराम कृष्ण है, किंतु गोपियों का और गायों का यह भाव देख करके कृष्ण की इच्छा हुई कि मैं इनके पुत्र बन जाता और इनके बछड़े बन जाता। एक दो गायें और एक दो गोपियां ने लाखों लाखों कोटि कोटि गायें कैसे किया जाए ऐसे सोच रहे थे। इतने में उनकी योगमाया शक्ति जी ने झट इस काम को पूरा करने की चेष्टा की। कृष्ण ने सपौली एक ग्राम है आगे आएगा सपौली, सपौली में अघासुर का वध किया था, अब उसको सांप के बदले में अब सपौली ग्राम कहते हैं। और कृष्ण अपने कृष्ण के जितने भी बच्चे थे भाई सखा थे सब उसके मुख में प्रवेश कर गए। कृष्ण रेखा जी से ये सब बछड़े और सखा हमारे उसके पेट में घुस गए तो वो भी उसके भीतर में घुस गए। वो कृष्ण के लिए अपना मुख खोल करके जबड़ा एक आकाश में लगा दिया और एक पृथ्वी पर लगा दिया। सुंदर गलीचा बिछ गया, गलीचा क्या बिछा उसकी जीभ एकदम लाल उस पर बिछा दिया। अच्छा ठीक है, बस कृष्ण भी उसके पीछे पीछे जब चले गए तो उसने मुख बंद कर दिया। अब जितने बच्चे थे वो सब तो मूर्छित हो गए और जितने बछड़े थे वो सब उसके पेट में समा गए और मूर्छित हो गए। कृष्ण जी उसके गले में जाकर के अटक गए और लौहपिंड जिस प्रकार से लाल होता है उसके गले में ऐसे लग गए, सांस भी नहीं ले सकता, गर्मी के मारे मरने लग गया। अब मरा, अब उसको निकलना भी चाहता है तो वो नहीं निकल सकता। तो जट उसका ये मस्तिष्क फट गया और सब उसी के सहारे सब निकल आए, कृष्ण भी निकले। और वो तो जब जल रहा था उसका गला और प्राणवायु उसकी निकली, निकल करके आकाश मार्ग में घूमने लग गई ज्योति। और घूमते घूमते जब कृष्ण वहां से निकले सखाओं के साथ में, जब निकले तो वो ज्योति आकर के कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। दो मिनट के बाद में पानी निकली, दो मिनट के बाद में तब फिर गड़बड़ हो गया। तो उनकी ज्योति घूमने लगी आकाश में और कृष्ण के चरणों में प्रवेश कर गई। जब भगवान असुरों को मारते हैं तो उनको अपने में साई की गति देते हैं, इसलिए उनके चरणों में मिल गया। और जो लोग त्रिपुंड धारण करते हैं ऐसे भस्म लगाते हैं ना, त्रिपुंड ऐसा खींचते हैं हाथों पर, ऐसे खींच लेते हैं और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और खाए बिना बिना कठोर तपस्या करते हैं 2-4 लाख वर्ष, तब कहीं जाकर के भगवान प्रसन्न उन पर हो जाए तो उनको साई की गति दे देते हैं। ऐसे जो असुरों को